उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी
समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। आज के संस्करण में हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों से नई नई जानकारी। तो आइए चलते हैं आधे घंटे के लिए देश के पूर्वोत्तर के हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों की ओर, जहां आप पूर्वोत्तर की अद्भुत क्षमता, प्रकृति की सुंदरता और पारंपरिक विरासत को शब्दों के माध्यम से महसूस करेंगे। तो आइए चलें पूर्वोत्तर।
पूर्वोत्तर डायरी।
नीति आयोग ने 500 आकांक्षी ब्लॉक और 112 आकांक्षी जिलों के 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों के लिए राष्ट्रव्यापी संपूर्णता अभियान शुरू किया है। 3 महीने के इस व्यापक अभियान में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास, शिक्षा सहित कई विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। पहले दिन लाखों लोगों ने इस अभियान में भाग लिया। सिक्किम में संपूर्णता अभियान आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत देश के बाकी हिस्सों की तरह सोरेंग जिले में और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों को नामची और ग्यालछिंग में शुरू किया गया।
नामची जिला अंतर्गत किसान मार्केट में संपूर्णता अभियान कार्यक्रम में जिलापाल नामची अनुप तामलिंग, एडीसी नामची सुभाष घिमिरे और नीति आयोग समन्वयक डॉ दर्पजीत सेनगुप्ता सहित प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया।
बिफोर वी लॉन्च द प्रोग्राम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टैंड अप टू टेक दिस प्लेज। आई प्लेज टू वर्क एंड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेकिंग माय ब्लॉक अचीव saturation in all the indicators of the Sampurnata Abhiyan and lead my block towards a healthy, empowered and prosperous community and work for transforming it from aspirational
जिलापाल तामलिंग ने जिला के आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चयन पर प्रकाश डाला और अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयास का आग्रह किया। उन्होंने कहा
दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज द एस्पिरेशनल ब्लॉक एंड टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ नामची डिस्ट्रिक्ट एंड द एस्पिरेशनल अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक we are now launching today the Sampurnata Abhiyan, which will start from the 4th of July to 30th of September. Under this, there are 6 indicators that we are supposed to achieve within a period of 3 months, and the details of which will be given to you by the ADC Namchi. And I am very, very positive and highly motivated that Namchi Block will be able to achieve the aspirational block targets that will be assigned to us, and then we will reach up to a higher position in the aspirational district block ladder. With this, today we will have with us Dr. Darpajit Sengupta, coordinator from Niti Aayog, and I will warmly welcome you, sir, to Namchi district, and it is a pleasure to have you with us. And with his visit, we will not only be honored to have to take him around, but we will gain a lot from his experience and his expertise. And I request all the stakeholders to take advantage of his visit and take whatever we can from his expertise. With us, we also have ADC Namchi, SCM Namchi, and BDO Namchi. I warmly welcome you also. Or this auspicious day of launching of Sampurnata Abhiyan. I would also welcome our CTPO sir, Additional Director Horticulture Agriculture, officers from Health Department, all the SSGs who have come here today, and all other line departments who are present here today, and not to forget our honorable members of the Panchayat Thank you so much for coming here, and let us all work together in achieving this 3 months long target that has been assigned to us. यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई मेरोदेखि हार्दिक तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछु. साथसाथै यो आशा राख्दछु कि हामीले यो जुन चाहिँ नाम्ची ब्लकलाई 3 महिनाको जुन चाहिँ टार्गेट दिएको छ, 6 वटा इन्डिकेटर्स छ जुन चाहिँ अब हाम्रो एडिसी नाम्चीले तपाईँहरूलाई विस्तारमा बताउने हुनुहुन्छ. सो त्यसको लागि चाहिँ हामी एक्लैले काम गर्न सकिँदैन, वी विल ह्याभ टु वर्क एज अ टिम. तपाईँ हामी भएर मात्रै हामीले त्यो टार्गेट अचिभ गर्न सक्छ. जति हामीले टार्गेट अचिभ गर्छ त्यो तपाईँको सक्सेस हुन्छ, त्यो हाम्रो सक्सेस हुन्छ, त्यो चाहिँ सम्पूर्ण नाम्ची डिस्ट्रिक्टको सक्सेस हुन्छ. सो आई रिक्वेस्ट भेरी गुड कोअर्डिनेसन एन्ड कोअपरेसन फ्रम इच वान अफ यु प्रेजेन्ट हियर. हामीले एकअर्कालाई साथ दिनु पर्यो.
इसी तरह से नीति आयोग समन्वयक डाक्टर दर्पजीत सेनगुप्ता ने कहा,
द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम विच स्टार्टेड इन 2018 एंड आफ्टर द सक्सेस ऑफ दैट प्रोग्राम सो इट वाज फेल्ट दैट द ब्लॉक शुड ऑल्सो डेवलप एंड फॉर दैट रीजन द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड एंड वी एम एट इम्प्रूविंग ईच एंड एवरी सिलेक्टेड ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री. नाउ व्हाट वी प्लान टू डू इज दैट वी आर लॉन्चिंग द संपूर्णता अभियान. The main aim is that we will focus on 6 major indicators from health, social development, from agriculture, from nutrition, so that they quickly reach their saturation level and all the benefits of the program is actually going to the grassroots of the country. So I once again thank all of you for coming to this program. And you are the main stakeholders of this program. The program has been designed for you all. Your participation is very much solicited and we look forward for the success of this program from the endeavors that we get from your end.
सोरेन जिल्ला अन्तर्गत जोरथाङ के सामुदायिक भवनमा आयोजित कार्यक्रममा विधायक मदन सिन्चुरी, जिल्लापाल सोरेन धीरज सुवेदी और अन्य जिल्ला अधिकारी मौजूद थिए. यस अभियानको विकासको बढाने और प्रमुख प्रदर्शन संकेतकको प्राप्त गर्ने के साधन के रूपमा पेश किया गया था. विधायक सिन्चुरी ने जिल्ला की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सामुदायिक समर्थन का आह्वान किया. कार्यक्रम में नीति आयोग की पहलों पर एक व्याख्यात्मक वीडियो, शिकायत सत्र और स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक विकास पर प्रस्तुतियां शामिल थी. गेजिङ जिल्ला अन्तर्गत जिल्ला पञ्चायत भवन क्योङसामा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला अध्यक्ष डीसी लिम्बू, जिल्लापाल गेजिङ हिस्से डी योङडा और अन्य स्थानीय अधिकारी मौजूद थिए. प्रत्येक जिल्लेमा अधिकारियों ने इस ब्लकों को आकांक्षा पूर्ण से प्रेरणादायक बनाने के लिए हितधारकों के बीच संयुक्त प्रयासों के महत्व को दोहराया, जिसे पूरे देश में प्रगति के लिए मानक स्थापित हो सके. स्मरण हो, नीति आयोग ने 4 जुलाई को संपूर्णता अभियान शुरू किया. इसमें देश भर के नागरिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी दिखाई गई. सभी 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में कार्यक्रम आयोजित किए गए. 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाले 3 महीने के इस व्यापक अभियान का लक्ष्य सभी आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में संकेतकों की 100% संतृप्ति प्राप्त करना है. अभियान के पहले दिन जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक जिला और ब्लॉक स्तर के लाखों अधिकारियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, सामुदायिक क्षेत्र की हस्तियों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों, छात्रों और स्थानीय प्रतिनिधियों, ब्लॉक प्रमुखों, सरपंचों की उत्साहपूर्वक भागीदारी दिखी गयी. उत्तर पूर्वी राज्यों ने भी पूरे जोश के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया. आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मैं दिलीराम दुलाल.
हमारे संवाददाता एवंचा शर्मा ने हमें बताया कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्णता अभियान को नामची जिले के किसान बाजार में अनुपा तामलिंग, जिला कलेक्टर और जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शुरू किया गया और ये अभियान 4 जुलाई से शुरू हुआ और 30 सितंबर 2024 तक चलेगा और इसमें जो क्षेत्र विशेष रूप से शामिल किए गए हैं उनमें स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और सामाजिक विकास शामिल है। संपूर्णता अभियान के ही अंतर्गत त्रिपुरा में नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक राजीव सेन, डीएम साजू वहीद ने धलाई जिले के सुदूर गंगानगर ब्लॉक में जागरूकता सह व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आकांक्षी जिले की जनसंख्या में 6 सामाजिक मापदंडों की संस्तुति देना था। नागालैंड में भी आकांक्षी जिला किफिरे में संपूर्णता अभियान की इस सप्ताह शुरुआत हुई। इस अवसर पर किफिरे के उपायुक्त टेमसुवती लांकुमेर ने संपूर्णता अभियान की शपथ भी दिलाई। उधर अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चावना मिन ने खोंगकम में नीति आयोग के नेतृत्व में 3 महीने की पहल संपूर्णता अभियान का उद्घाटन किया। 30 सितंबर तक ये कार्यक्रम जो चलेगा उसका लक्ष्य है आकांक्षी खंडों और जिलों के अंतर्गत 6 प्रमुख संकेतकों में शत प्रतिशत पूर्णता प्राप्त करना और एक तरह से संपूर्णता अभियान समावेशी विकास के लिए सरकार के समर्पण और सबसे वंचित समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
शौकीय रूप लोई वहग्नो आहे कोलोई ब्रह्मपुत्र दुई पारले नहि जानो एई ब्रह्मपुत्र महान ऐतिह्य बाकी
महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ कत युग धरी आहि से प्रकाशी अमन्नय अर्थ महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ कत युग धरी आहि से प्रकाशी अमन्नय अर्थ महाबाहु ब्रह्मपुत्र।
और अब मौसम बेमौसम हो रही बरसात की भी चर्चा कर लें। कई जगहों पर कई राज्यों में बारिश बहुत तेज है और कई राज्यों में बारिश की झमाझम मन मोह रही है, लेकिन अगर असम का हम रुख करें पूर्वोत्तर में तो असम में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति खराब हुई है। 29 जिलों में 21 लाख से अधिक लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने बाढ़ प्रभावित मोरीगांव जिले का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। राज्यपाल ने जिला प्रशासन से प्रभावित लोगों की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी स्थिति की समीक्षा करने के लिए माजुली, धेमाजी और लखीमपुर का दौरा किया। हमारे संवाददाता ने हमें बताया,
असम में बाढ़ के कारण से और लोगों की मौत हो गई। राज्य भर में 107 राजस्व क्षेत्रों के 3200 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित है और 57,000 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया है। राज्य सरकार ने 247 राहत शिविर और 451 राहत वितरण केंद्र खोले हैं। बसा हुआ राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। अमीनुल हक जोद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
असम के धेमाजी जिले के शिवगुड़ी और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के नेर गांव में बाढ़ राहत कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। दोनों ही राज्य 29 जून से लगातार वर्षा से प्रभावित हैं। सेना ने प्रभावित इलाकों में राज्य आपदा मोचन बल के साथ मिलकर शिवगुड़ी, नामसिंह घाट, पगलाम और ओरियन घाट में बचाव और राहत अभियान चलाया। इस दौरान 17 बच्चों और 20 महिलाओं सहित करीब 48 नागरिकों को बचाया गया। सेना ने अस्थायी आश्रय स्थल बनाए और बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता भी प्रदान की। अरुणाचल प्रदेश में द्री उत्सव की धूम रही। ये एक कृषि अनुष्ठान है जो आपातानी जनजाति की जीवंत संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। ये अरुणाचल प्रदेश के बहु जनजातीय और बहु समूह समाज के प्रशंसनीय संदर्भ को पुष्ट करता है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनायक ने द्री उत्सव के पावन अवसर पर राज्य के लोगों और विशेष रूप से आपातानी समुदाय को अपनी शुभकामनाएं और त्योहार की शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये गर्मजोशी और भव्यता जो हमेशा उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है सभी के लिए खुशियां और समृद्धि लाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं समुदाय के बुजुर्गों और उत्साही युवाओं से अपनी जातीयता और रीति रिवाजों पर गर्व करने को बढ़ावा देने और इसे भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने का आह्वान करता हूँ। अरुणाचल प्रदेश अपनी महत्वाकांक्षी 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत मिशन ओलंपिक रोडमैप और युवा नीति तैयार कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार अपनी महत्वाकांक्षी 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत मिशन ओलंपिक 2028 और मिशन ओलंपिक 2032 नाम का एक रोडमैप तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि नई सरकार के 100 दिनों के भीतर रोडमैप को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और लागू भी किया जाएगा, जो दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन ओलंपिक के लिए प्रतिभाशाली एथलीटों की खोज और फिर खोज करके उन्हें विकसित करेगा। श्री खांडू ने ग्यालवा सांगयांग ग्यात्सो हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम में फीफा मानक कृत्रिम टर्फ फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के युवाओं की प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें निखारने के लिए एक नई युवा नीति भी तैयार की जा रही है। ये नीति भी राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना का ही हिस्सा है। इस बीच प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी आइजोल ने बुधवार 3 जुलाई को आइजोल में 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया। तकनीकी सत्र में सरकारी मिजोरम लॉ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर पी लालरेम मरुति ने न्यायपालिका के दृष्टिकोण प्रस्तुत किए और ऑनलाइन डेटा तक सार्वजनिक पहुंच में सुधार और आम जनता के लिए अधिक सहज अनुभव बनाने के लिए नए कानूनों की प्रशंसा की। नए आपराधिक कानून पर कार्यशाला को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए मिजोरम विधानसभा के अध्यक्ष लाल बियाक जमा ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि लोग नए आपराधिक कानून को जानें, लेकिन नए कानून के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और नए कानूनों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हमारे संवाददाता जिन गांते ने बताया कि 3 नए आपराधिक कानूनों के पीछे के लोकाचार भावना और इरादे के बारे में आइजोल में मीडिया को संवेदनशील बनाने के लिए ये वार्तालाप आयोजन बेहद महत्वपूर्ण था। कार्यशाला के दौरान वक्ताओं ने इन कानूनों को लागू करने के औचित्य को समझाया तथा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के महत्वपूर्ण बदलावों पर प्रकाश डाला।
बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र के शोधकर्ताओं की एक टीम ने वेस्ट कमेंग जिले के मंडला क्षेत्र में एक नए पौधे की प्रजाति की पहचान हाल ही में की है। इस पौधे का नाम पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलेंस रखा गया है। यह नई प्रजाति गैस्नेरिया की फैमिली से संबंधित है और भारत में पाए जाने वाली इसकी जेनस की केवल दूसरी ज्ञात प्रजाति है। इस महत्वपूर्ण खोज का नेतृत्व बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय इकाई के वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा चोलू ने किया। नॉर्डिक जर्नल ऑफ बोटनी के नवीनतम अंक में प्रकाशित उनके शोध अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध वनस्पति विविधता को उजागर करता है और क्षेत्र में अद्वितीय पौधों की प्रजातियों के डॉक्यूमेंटेशन और संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों पर जोर देते हैं। इस उपलब्धि पर बोलते हुए डॉ. चोलू ने कहा कि पेट्रोकोस्मिया अरुणाचल लेंस की खोज अरुणाचल प्रदेश की अविश्वसनीय जैव विविधता को रेखांकित करती है।
एक सडन हम लोग का विजिट था मंडला तरफ वेस्ट कमेंग डिस्ट्रिक्ट, तो हमने पाया कि एक जो हम रोड किनारे से हम लोग बहुत 3 किलोमीटर अंदर चला गया और 3-4 किलोमीटर जाने के बाद वहाँ पे देखा एक केव है। मेरा जो कोऑथर है देन दे वेंट इनसाइड एंड दे सर्च की वहाँ पे एक प्लांट है। फिर मैंने देखा अरे हाँ यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्पीसीज है, क्योंकि वो स्पीसीज बहुत ही अंदर था, यानी कि वो सनलाइट बहुत कम लेता होगा, लेकिन सनलाइट तो लेगा ही क्योंकि वो ग्रीन है, तो मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड, सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और उसमें देखा वो छोटा छोटा 2 फूल था, तो फिर उसको हम ले आए कुछ स्पीसीज को, हम वर्कआउट करा, फिर डिसेक्शन करके अच्छे से स्पीसीज को स्टडी किया, इसका लेग ब्रेड कैसा है, वो बहुत ही वाइटी थोड़ा पर्पल कलर का फ्लावर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत हेयरी था, जो उस जेनस के लिए बिल्कुल नया था, जो वर्ल्ड में किसी से मैच नहीं कर रहा था। और हमने पाया गया कि ये पेट्रोकोस्मिया जेनस अरुणाचल से रिपोर्टेड नहीं है, हमारे अरुणाचल में इतना रिच बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ पे ये जेनस ही नहीं था, तो दिस इज द फर्स्ट जेनस रिपोर्टेड फ्रॉम दिस स्टेट एंड दिस स्पीसीज इज न्यू टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, सो इट्स अ अचीवमेंट फॉर आवर BSI एंड ऑल्सो फॉर आवर होल साइंटिफिक कम्युनिटी।
भारत के वनस्पति परिदृश्य में इस नए जुड़ाव से शोधकर्ताओं और वनस्पति शास्त्रियों का वैश्विक ध्यान और रुचि समान रूप से आकर्षित होने की उम्मीद है। यह खोज बोटानिकल रिसर्च के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अरुणाचल प्रदेश की स्थिति को और मजबूत करता है और वैश्विक संरक्षण प्रयासों के इसके महत्व को रेखांकित करता है। मेरा केस दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर।
शिलंग में वस्तु और सेवा कर GST के मुख्य आयुक्त कार्यालय ने बीते मंगलवार को सशक्त व्यापार समग्र विकास थीम के अंतर्गत GST कार्यान्वयन की 7वीं वर्षगांठ मनाई।
GST has ensured that indirect tax rates and structures are common across the country.
1 जुलाई 2017 हमारे देश के अप्रत्यक्ष कराधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर था। GST की शुरुआत ने हमारे अप्रत्यक्ष कर शासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, जिससे कई राज्य और केंद्रीय करों को एक एकीकृत संरचना में व्यवस्थित कर दिया गया। पूरे देश के लिए कुछ कर दरों वाली एक समान प्रणाली ने व्यापार करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। ये आयोजन घरेलू वस्तुओं के लिए कर दरों पर GST के प्रभाव पर केंद्रित था। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे GST के कार्यान्वयन से खाद्य पदार्थों और बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तुओं पर बचत हुई है, जिससे परिवारों के लिए जीवन यापन में आसानियां आई हैं। इस अवसर पर GST आयुक्त H. सोईकनथांग ने GST प्रशासन की कुछ जटिलताओं को स्वीकार किया। उन्होंने कहा इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने कौशल को लगातार बढ़ाएं और अपने कार्यबल को इन चुनौतियों से कुशलता से निपटने के लिए सशक्त बनाएं।
गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST हैज रिड्यूस्ड कंप्लायंस कॉस्ट फॉर टैक्स पेयर्स, promoting ease of doing business and improving the country's overall business climate. The new taxation system has helped to integrate the Indian market and has created a level playing field for business irrespective of their location in the country. Additionally, our GST has contributed to the growth of a formal economy and increased tax revenue for the government. This year, on the 7th anniversary of GST Day, the theme is Sashakt Vyapar Samagar Vikas, which means strong business or trade for overall development.
उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि मार्च महीने में विभाग ने GST प्रशासन में सुधार और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी शिलंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पिछले 7 वर्ष में विभाग ने केंद्रीय समकक्षों के साथ मजबूत साझेदारी बनाई है जिसमें सौहार्द और सहयोग को बढ़ावा मिला है। अपने पर्याप्त संसाधनों और विशेषज्ञता के साथ केंद्रीय जीएसटी द्वारा दिया गया समर्थन अमूल्य रहा है। विशेष रूप से अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और उनके क्षमता निर्माण के मामले में ये विशेष महत्व रखता है। इस बीच ऑडिट श्रीलंका आयुक्त एचएम अनल ने जीएसटी संग्रह में लगातार वृद्धि को देखते हुए जीएसटी के सकारात्मक आर्थिक प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी से पारदर्शिता आई है और कर का रिसाव रोका गया है।
इफेक्ट ऑफ टैक्सेस जीएसटी हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इट हैज ऑल्सो ब्रॉट अबाउट ट्रांसपेरेंसी, बेटर कंप्लायंस एंड स्मूदर प्रोसेसेस। टुडे द जीएसटी कलेक्शन इज अराउंड across the country is around 1.6 lakh crores. You know, when we talk about an increase in GST collection, we also understand that many businesses have come to be registered under GST and that compliance, tax compliance amongst taxpayers have also improved. And this is possible only with the active participation and cooperation of the business entities, tax professionals and of course fellow citizens.
उन्होंने कहा कि कई नए व्यवसाय पंजीकृत हुए हैं जो ये दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था फल फूल रही है। इसी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सीजीएसटी शिलंग आयुक्तालय द्वारा वन नेशन वन टैक्स के विषय पर अंतर स्कूल और कॉलेज वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जीएसटी ने ये सुनिश्चित किया है कि अप्रत्यक्ष कर की दरें और संरचनाएं पूरे देश में समान हों। ये सुधार केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए अधिक कुशल और पारदर्शी कर प्रणाली की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम कहा जा सकता है।
दिस रिफॉर्म वॉज नॉट मेयरली एडमिनिस्ट्रेटिव बट अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप टूवर्ड्स मोर इफिशियंट एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम फॉर द नेशन। दिस इज लमफ्रांग नोंगस्तुंग फ्रॉम AIR न्यूज शिलांग।
पूर्वोत्तर का समूचा इलाका हवाई सड़क और रेल संपर्क से जुड़ा है। कोई भी जगह अब दूर नहीं, तो परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पूर्वोत्तर के राज्यों को अवश्य ही देखें और आनंद लें। आप यहां पहाड़ियों के मनोरम दृश्यों का आनंद तो लेंगे ही, साथ ही आप पूर्वोत्तर में अद्भुत क्षमता और कौशल को भी देखेंगे और उसे महसूस करेंगे। तो अपने देश को देखिए, जानिए और चले आइए पूर्वोत्तर की ओर।
जहाँ कंचनजंघा असी, जहाँ बच्छा सितारंगी, जहाँ कंचनजंघा असी।
और अब आपसे अनुमति लेने का समय आ पहुंचा है। कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा ही इंतजार रहता है। हमारा ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com। प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। तो अब अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी। अब हमें अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश लहदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।